मेरे प्रिय युवा साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 26 नवंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं नवनीत कटियार का जो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी के 15 दिन की क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं राज्यपाल की गरिमा इस विषय पर आप सबसे कुछ बहुत ही जरूरी बातें करूंगा, खासकर परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना कि आज संविधान दिवस है। लंबे समय के जद्दोजहद के बाद 3.5 साल लगभग आप लग गए कह लीजिए कि संविधान को बनाने में, और बहुत बड़ी हमारी संविधान सभा थी जिसने इस संविधान का निर्माण किया। और इसके बाद आज की ही तारीख 26 नवंबर, लेकिन वर्ष दूसरा था, 1949 को इसे अंगीकृत किया गया कह लीजिए, स्वीकार किया गया, और 2 महीने के बाद फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। 70 साल उसके हुए हैं, तो आज संविधान दिवस है। चूंकि 70 वर्ष हुए हैं इसीलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण वर्ष हो जाता है। तो फिलहाल मैं केवल इतना आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो हमारा संविधान बना है, हमारे संविधान में जो हमारी परंपराएं, जो हमारे समाज की झलकियां और जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट की जो वैल्यूज रहे हैं, वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं, इसके बारे में आप सबको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, थोड़ी सी तैयारी, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 70 वर्ष हो सकता है कि इससे संबंधित कोई प्रश्न प्री में या मेंस में पूछ लिया जाए। ज्यादातर संभावना मेंस में पूछे जाने की है। दोस्तों, दो और खबरें हैं जो बेसिकली न्यूज में तो नहीं है लेकिन अखबारों में हैं, और उसमें से जो एक खबर है वो खासकर बहुत तेजी से लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद अब मैं इस पर थोड़े से और विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। हालांकि इसकी सूचना मैंने आप सबको पहले दे दी है, और ये सूचना है कि जो राजस्थान का जो सांभर झील है, मैंने आपको बताया था कि कैसे उसमें जो विदेशी पक्षी आए हुए हैं, बहुत से पक्षी मारे गए। कभी आंकड़े कहीं 20,000 के मिलते हैं, कहीं 15,000 के मिलते हैं, कहीं 17,500 के मिलते हैं। आंकड़े इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत से पक्षी मारे गए हैं एक वायरस की वजह से। मैंने वायरस का आपको सबको नाम भी बताया था। अब सवाल यह है कि अब ये जो घटना है ये सिविल सर्विस से किस तरीके से जुड़ रही है। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो इस तरह से ये प्रश्न बनता है कि सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यहाँ लगभग आप कह लीजिए कि नमक बनाने की दुनिया भर की फैक्ट्रीज हैं, दुनिया भर के मजदूर, बहुत सारे मजदूर इसमें काम कर रहे हैं, तो ये एक छोटी सी बात है। बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया से हुआ, एक सामान्य सी जानकारी प्री की दृष्टि से हो गई। लेकिन मेंस की दृष्टि से मुझे लगता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण यहां बनता है, और वह है हमारे जो जल स्रोत हैं उनकी सुरक्षा। देखिए, ये झील है, ये जल स्रोत है, और इसमें जो अभी विकार आया है वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि इसकी ठीक से देखभाल नहीं की गई। जब इस झील के पानी को टेस्ट किया गया तो बकायदे इसमें भारी धातुएं और बैक्टीरियाज वगैरह का संक्रमण मिला, और कहा जाता है कि इसका पानी पीने से ही इतने पक्षी मरे हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी है मित्रों। देखिए, हमारे पास 3 ऐसी झीलें अभी हैं, मैं मेंस की दृष्टि से बात कर रहा हूं, जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से काफी आगे बढ़ाया गया है और डिफरेंट किस्म की गतिविधियां भी शुरू कर दी गई हैं, जिसमें एक राजस्थान की डेफिनेटली जिस पर हम बात कर रहे हैं सांभर झील है, दूसरा ओडिशा में एक चिल्का झील है, और चंडीगढ़ में सुखना झील है। तो ये 3 झीलें हैं जिसमें सैलानियों को आकर्षित करने के लिए कुछ व्यावसायिक गतिविधियां भी चलती हैं, कुछ मनोरंजन वगैरह खेलकूद होते हैं, रेस्तरा बनाए गए हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो गई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओडिशा की का जो चिल्का झील है और जो चंडीगढ़ में जो सुखना झील है, वहां भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन वहां बकायदे इन पर नियंत्रण रखा जा रहा है और इस बात का को बहुत महत्व दिया जा रहा है कि इससे झील प्रदूषित ना हो, और इसका पूरा अभाव सांभर झील के आसपास दिखाई देता है। पिछले कुछ समय से वहां बहुत ज्यादा इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो गई है। सांबर झील में, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं है और नतीजा ये हो रहा है कि रेस्टोरेंट और जो दूसरे हैं उनकी गंदगी और प्रदूषण उस झील में पहुंचती जा रही है और उसी के परिणाम स्वरूप अभी यह स्थिति हमारे सामने उपस्थित हुई है। तो कह सकते हैं कि अगर सांभर झील की भी व्यवस्था दो झीलों के बारे में हमने बातें की हैं उस तरीके के अगर हो जाए तो इसको पुनर्जीवन मिल सकता है। और खासकर दो तीन बातें यहाँ आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ नमक बनाने के बहुत ज़्यादा कारखाने हैं, तो वो जो निजी ठेकेदार जो नमक बना रहे हैं, एक उपाय तो ये सुझाया जाता है कि उसको बंद कर दिया जाए, उसको बकायदे एक सिस्टमेटिक तरीके से नमक बनाया जाए। दूसरा ये है कि वहाँ बकायदे जो हाई क्षमता कैपेसिटी वाले हैं वो कैमरे लगाए जाएं, ड्रोन कैमरों से बकायदे उस एरिया की निगरानी की जाती रहे और प्रदूषण पर खासकर ध्यान रखा जाए, निगरानी रखी जाए, तो काफ़ी कुछ झील की स्थिति बेहतर हो सकती है। और इस झील में तो आसपास इतना ज़्यादा कब्जा भी हो चुका है कि प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो खासकर जो हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो जल के केंद्र हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर एक प्रश्न दोस्तों इसके माध्यम से बनता है। अब जो मैं आज की आखिरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो जो बताने जा रहा हूँ वो है चिली को लेकर। सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन में मान लीजिए कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश ऐसा है जहां अभी बहुत ज़्यादा अशांति या 2019 में बहुत ज़्यादा अशांतियां रहीं या शासन के खिलाफ लगातार विद्रोह होते रहे। मान लीजिए कि ये प्रश्न पूछा जाता है और उनमें से चार विकल्प दे दिए जाते हैं और उन चार विकल्पों में से फिर बाद में समूह दे दिए जाएंगे और वो चार विकल्प आपको मान लीजिए दिए जाते हैं चिली, कोलंबिया, बोलीविया और इक्वेडोर, तो क्या आप इसका सही जवाब देने की स्थिति में हैं? सिविल सर्विस में फ्रेंड्स से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चिली के बारे में आपको शायद अखबारों में अभी लगातार पढ़ने को मिलता होगा और मैंने बहुत पहले इसका उल्लेख भी किया था, बहुत थोड़े में ही उल्लेख किया था कि कैसे वहाँ जब मेट्रो का किराया बढ़ाया गया, मेट्रो रेल का, तो पूरी की पूरी जो पब्लिक थी, खासकर यंग जो जनरेशन थी, वो बिल्कुल सड़कों पर उतर आई और उसने जबरदस्त रूप से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। और सच पूछे तो ये मेट्रो रेल के ही विरुद्ध तो उस समय अभी जो चल रहा है, लेकिन पीछे काफ़ी समय से सरकार के खिलाफ वहाँ जबरदस्त रूप से असंतोष का भाव चला आ रहा है। चिली जो है वो एक तरह से जो लैटिन अमेरिकी देश है, जिसे आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी कहते हैं, उन देशों को हम कहते हैं लैटिन अमेरिकी देश। चिली उनमें से एक धनी राष्ट्रों में से एक है और मुझे चिली जाने का सौभाग्य मिला है। मैं चाहूंगा कि आप नक्शे में चिली को देखें। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप देखेंगे कि इसका जो पूरा का पूरा दक्षिण जो पश्चिमी भाग है, बिल्कुल किनारे, एक ऐसा लगेगा जैसे कि कोई केचुआ लेटा हुआ है, वो है चिली। चिली और इसके बाद तीन और देश जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं ये भी लैटिन अमेरिका के ही हैं और आपको चाहिए कि आप नक्शे में इन्हें भी देखें। चिली के ठीक ऊपर यानी कि नॉर्थ में आपको मिलेगा बोलीविया, जिसका मैंने नाम लिया। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, बोलीविया के ऊपर वेस्ट में पेरू मिलेगा और इसके बाद ठीक ऊपर आपको कोलंबिया और इक्वेडोर मिल जाएंगे। कोलंबिया और इक्वेडोर आप कह लीजिए कि एक तरह से सटे हुए हैं और चिली और बोलीविया सटे हुए हैं और यहाँ जबरदस्त रूप से सरकार विरोधी आंदोलन चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त रूप से असंतोष का भाव है। तो ये चारों जो देश हैं आपके दिमाग में होने चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और जो मैं बात करने जा रहा हूं वो राज्यपाल की गरिमा को लेकर के। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो राज्यपाल की गरिमा पर जो मैं बात करने जा रहा हूं वो पूरा अपने आप में नहीं है, आप ये मत मानिएगा कि अपने आप में कंप्लीट है। उसका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है केवल उसी को मैं यहां आपके सामने रख पाऊंगा। देखिए, जब हम अपने संविधान की बात करते हैं और आज संविधान दिवस भी है, तो एक तथ्य आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए और वो तथ्य ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दो ऐसे पद हैं हमारे जो जब शपथ लेते हैं तो शपथ लेते समय उनकी जो भाषा होती है वो अन्य की भाषा से अलग होती है। जो अन्य की भाषा में कह रहा हूं उसमें आप उपराष्ट्रपति को ले सकते हैं, उसमें आप प्रधानमंत्री को ले सकते हैं, उसमें आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ले सकते हैं, उनकी अपेक्षा अलग होती है। तो वो अलग क्या होती है, केवल इसी बारीक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि सामान्यतया स्टूडेंट इसे इग्नोर कर जाते हैं। देखिए, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल जब शपथ लेते हैं, ये दोनों एक साथ लेके चलेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो ठीक है, वो शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर की, मैं अमुक यानी कि नाम लेकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन सत्यनिष्ठ करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके लिए मैंने आज इस विषय को चुना है, और मैं अपनी पूरी योग्यता से। अब देखिए, संविधान और विधि का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का और लॉ का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। तीन शब्द हैं, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। ये संविधान के ओरिजिनल शब्द हैं। इसकी जगह पर आपको किताबों में या अखबारों में थोड़े से दूसरे शब्द भी मिल जाएंगे, जैसे आपको परिरक्षण की जगह अभिरक्षण शब्द मिल जाएगा, ठीक इसी तरह से आपको प्रतिरक्षण की जगह संरक्षण शब्द मिल जाएगा। ये अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, ये जो ओरिजिनल वर्ड है वो है परिरक्षण, और ये जो परिरक्षण शब्द है इसके लिए मैं आपको इंग्लिश का भी शब्द बता देता हूं, इंग्लिश से ज्यादा क्लियर हो रहा है सच सच पूछे तो। प्रिजर्व ये परिरक्षण के लिए है, संरक्षण के लिए है प्रोटेक्ट, और प्रतिरक्षण के लिए है डिफेंड। इंग्लिश में जो वाक्य बनता है कि आई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी नाम होगा, दैट आई विल फेथफुली एक्सक्यूट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। यानी कि मैं संविधान और विधि, संविधान तो हमारा मतलब आप कह लीजिए विधि की भी जननी हो गई, जहां से पूरे के पूरे कानून निकलते हैं, तो जो हमारा संविधान है और जो हमारी संसद ने जो कानून, जो एक्ट अधिनियम पारित करके जो एक्ट बनाए हैं, उनको मैं परिरक्षित करूंगा, प्रिजर्व करूंगा, उनका संरक्षण करूंगा और उनका प्रतिरक्षण करूंगा। दोस्तों, जबकि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं और जो राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं, वो जब शपथ लेते हैं तो वे संविधान में निष्ठा की शपथ लेते हैं कि संविधान के प्रति मैं निष्ठावान रहूंगा, फेथफुल रहूंगा, लेकिन वो ये दावा नहीं करते कि मैं, या शपथ नहीं लेते कि मैं उसे प्रिजर्व करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा और डिफेंड करूंगा, ऐसा नहीं। पहली बात, यानी कि जो हमारे संविधान के जो अभिभावक हैं, उनका जो उनकी उस संविधान की हमारी जो रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे राष्ट्रपति पर है और हमारे राज्यपाल पर है। दोस्तों, इंग्लिश से क्लियर हो गया होगा। देखिए, प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को उसके ओरिजिनल फॉर्म में बनाए रखना। जैसे कि होता है ना कि कोई खाने की चीज आपने तैयार कर ली, अब उसको 10 दिन तक बनाए रखने के लिए उसमें आप प्रिजर्वेटर डालते हैं ताकि वो चीज ज्यों की त्यों रहे, यानी कि वो अपने मूल रूप में रहे। तो यहां कह रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो मूल रूप में रहे, मैं देखूंगा कि वो हमारे संविधान में बदलाव न होना पाए, यानी कि मैं उसकी आत्मा की रक्षा करूंगा। फिर है संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्ट, जैसे होता है ना कि माता पिता अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाए, कहीं चोट लग जाए, कहीं कुछ खतरा हो जाए, तो मैं देखूंगा कि हमारे संविधान को कोई इस तरह का नुकसान पहुंचाने न पाए, तो मैं उसकी रक्षा भी करूंगा, प्रोटेक्ट भी करूंगा। डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां मैं आपको डिफरेंस ही बता रहा हूं। और इसके बाद दिया हुआ है प्रतिरक्षण, डिफेंड करूंगा, यानी कि अगर कभी मेरे संविधान पर, मेरे देश के संविधान पर अगर कोई आपत्ति आई, कोई उसे नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, यानी कि मैं उसके समर्थन में खड़ा होऊंगा, मैं उसकी तरफ से बहस करूंगा, मैं बोलूंगा जरूरत पड़ने पर, तो यह होगा डिफेंड। तो देखिए, सामान्य रूप में ये तीनों शब्द लगभग लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, इसी की जानकारी मुझे विशेषकर आप सबको देनी थी। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसका संबंध महाराष्ट्र में भी जो घटनाक्रम राजनीति का चल रहा है वही इसका दोस्तों बेस है, लेकिन इस महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर हम लोग बाद में विस्तार से बातें करेंगे। तो आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: श्रुति सुमन, योगेश यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, श्रुति सिंह, विजय सिंह दलियावाली राजस्थान से, अंकित राज, प्रतीक चंद्र, सोमनाथ चक्रवर्ती, दीपांकर नायक, मयंक त्रिवेदी और संदीप तुरकार। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।